ମନ୍ଦିର ବନଚାରେ ଯମୁନା ତୀର ବନଚାରେ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରେ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରେ ଜୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରେ ଜୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭ ଗିରିବର ଧାରେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ବ୍ରଜ ଜନ ରଞ୍ଜନ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ବ୍ରଜ ଜନ ରଞ୍ଜନ ଯମୁନା ତୀର ବନଚାରେ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରେ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରେ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜୟ ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଧା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜୟ ଗୌରନିତାଏ 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 ଜୟ ଗୌରନିତାଏ जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल आय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयत्मुदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 श्लोक नंबर 22 और 23। 22 में परपुट नहीं है इसलिए हम 22 और 23 दोनों लेंगे। अब हम यहाँ अभी दोहराएंगे। अयं मही गा दुदुहे राजह प्रजापति वृत्ति कर प्रजानम् यलीलयाद्री न सकोट्या भिन्नं समाङ्गामकरोद्यथेन्द्र अयं महीगां दुदुहे अधिराजः प्रजापति वृत्ति करह प्रजानम् यलीलयाद्री न सकट्या विन्दन् समाङ्गामकरोद्यथेन्द्रः अयं महीगां दुदुहे धीराजः प्रजापति वृत्ति करह प्रजानम् जलु जलीलयाद्री न सुसत्सकट्या विन्दन् समाङ्गामकरो यथेन्द्रः दोहराइए कोई भी अयं महीगां दुदुहे धीराजः प्रजापति वृत्तिकरः प्रजानां जलीलयाद्री न सकट्या निन्नं समागाम करोदथेन्द्रः अयं महीगां दुदुहे धीराजः प्रजापतिवृत्तिकरः प्रजानां जलीलयाद्री न सकट्या निन्दन् समाङ्गामकरोद्यथेन्द्रः अयं महीमां दुदुहे धीराजः प्रजापतिवृत्तिकरः प्रजानां जलीलयाद्री न सकट्या विन्दन् समागमकरोदथेन्द्रः अयम यह राजा महीम पृथ्वी को गाम गाय के रूप में दुधु है दुहेगा अधिराजः अद्वितीय राजा प्रजापति ही मनुष्य का जनक वृत्ति करह जीवन सुविधाएं प्रदान करते हुए प्रजानाम नागरिकों की यह जो लीलया खेल खेल में अद्रीन पर्वत सोसरास अपने वाण की कोटया सॉरी कोट्टी कोट्या नोक से बिंदन विदीर्ण करके समाम समतल गाम पृथ्वी को अकोरत करेगा यथा जैसे इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र। अनुवाद। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने वाण की नोक से समस्त पर्वत को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वत को तोड़ता है। तो हम 23 नंबर श्लोक भी पढ़ लेते हैं। विस्फुर जयना जगवं धनो स्वयं दोराइए। हाँ, पर दूसरा श्लोक भी है, वो भी साथ लेंगे, उनका कोई फर्क पड़ नहीं है, दोनों साथ में चर्चा करेंगे, इसलिए ये भी पढ़ लेते हैं, साथ में दोनों लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। विस्फुर जयना जगवं धनो स्वयं यदा चरत्ख्याम विषय माजो तदा निलील्य दिदिशी संतो लंगोल मुद्यम यथा मृगेन्द्र। शब्दार्थ। बिस्पुर जयन टंकार करते हुए आज गवम बकरों तथा वेल के सिंग से बना हुआ धनो हो अपना धनुष स्वयं स्वयं यदा जब अचरत विचरण करेगा ख्याम पृथ्वी पर अविसह्यम दुर्धरा बिना रोक के आ जाओ युद्ध में तदा उस समय नीलिल्युहो छिप जाएंगे दिशी दिशी चारों दिशाओं में असंत आसुरी लोग लांगुलम पूछ को उद्यम्य ऊंची करके यथा जिस प्रकार मृगेंद्र सिंह अनुवाद जब सिंह अपने पूछ पर ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सिंगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। तात्पर्य पृथु जैसे राजा की तुलना सिंह से करना अत्यंत उपयुक्त है। भारत में क्षत्रिय राजा सिंह कहलाते हैं। जब तक राज्य के धूर्त चोर तथा अन्य आसुरी लोग राज्य करने वाले बलवान शक्तिशाली प्रशासक अध्यक्ष से डरते नहीं तब तक राज्य में शांति या संपन्नता नहीं हो सकती। इस तरह यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभागा माना जाता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं गदाति सपदाद। वंदेहं श्री गुरुर् श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुर् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजतं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं श्री सहगण ललिता श्री विशाख नितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम पृथु महाराज के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम बहुत दिनों से इस प्रसंग को पढ़ते आ रहे हैं श्रवण करते आ रहे हैं। तो ये जो पृथु महाराज है ये राजा बैन का पुत्र है, इसलिए उनको कहा जाता है बैन कुमार। तो राजा बैन जो है वो एक मायावादी राजा थे या एक दुष्ट राजा थे जो कि सारा संसार में अधर्म फैलाते रहते थे। तो वैसे ही जो राजा बैन है वो महाराज अंग की पुत्र है। तो महाराज अंग जो है वो बहुत धार्मिक राजा थे। तो उनका पुत्र बैन है। तो बैन जब उत्पन्न हुआ तो वो अधर्म की ओर प्रवृत्त होने लगा। तो इसका कारण यह है कि जो बैन है उनका माता जो है वो यमराज का पुत्री है, इसके कारण यमराज जो है पाप अधर्म का दिष्टता, जो अधर्मियों को दंड देता है, तो उसके कारण उनके अंदर जो गुण है ये बैन के अंदर आ गए, जिसके कारण वो इस प्रकार पाप पुण्य कार्य में लिप्त रहा, अधार्मिक मार्ग में प्रवृत्त हो गए। तो जब वो अधर्म फैलाए तब देश में राज्य में अराजकता फैलने लगा। तो जब अराजकता फैलने लगा तब जो हमारा राज्य में जो हमारा राज्य में जो मुनि ऋषि हैं, जो है ब्राह्मण है, जो पंडित लोग हैं, जो कि जिसके माध्यम से एक राजा अपना राज्य को परिचालना करता है, राज करता है, अध्यक्षता है, इसलिए पहले राजा के पास गुरु रहते थे, राजगुरु कहा जाता था। तो ब्राह्मण लोग जब देखे कि बैन बड़ी अधर्म अधर्म मार्ग में जाता है और यज्ञ जो भगवान के लिए जो यज्ञ करते हैं, जो कर्मकांड, ये सब बंद करने कर दिया, कि उसके अंदर इतना अहंकार बढ़ गया कि वो धर्म को भूल गया, भगवान को भूल गया, खुद ने खुद कहा कि मैं खुद भगवान हूं, मुझे पूजा करो, कोई भगवान कोई विष्णु विष्णु किसी को पूजा मत करो। तो इस प्रकार वो यज्ञ सब बंद कर दिया, जहां जहां सब चलता था, धार्मिक कार्यक्रम चलता था, सब जो आध्यात्मिक फेस्टिवल चलता था, तो वो सब बंद कर दिया। तो बोला मुझे ही पूजा करो, मैं सब कुछ हूं, मैं ये राज्य का राजा हूं, तो मुझे पूजा करोगे तो मैं सब कुछ तुमको देता हूं, पर तुम ये विष्णु को पूजा करते हो, ये कौन है? तो ये मुनि ऋषि ने जब आके उसको समझाए तो वो कुपित हो गया और उनको कहने लगा, अरे तुम लोग सब मूर्ख हो, नहीं समझते हो, राजा मैं हूं, मैं तुमको भरण पोषण करता हूं और तुम मुझे नहीं पूछते हो, उसके बदले फिर कई विष्णु या कौन किसी को आप मानते हो, इसलिए आप लोग सब धूर्त हो। इस प्रकार जब मुनि ऋषियों को कहने लगा तो मुनि ऋषि समझ गए कि ये जो अधार्मिक जो दुष्ट राजा है, बैन है, ये समझेगा नहीं। तो ऋषि ने आपस में बातचीत करके परामर्श लेते हुए उस बैन को अपना सांप के द्वारा उसको मार दिए, उनका वध कर दिए। जब उनका वध कर दिए तब राज्य में और भी अराजकता फैल गया, चोरों का संख्या बढ़ गया, अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, हर कहीं हर जगह में चारी दिगा में लूटपाट चलने लगा। तो एक बार ऋषियों ने सरस्वती के नदी के तट पर भगवत कथा या भगवान का कथा के बारे में चर्चा कर रहे थे या सत्संग कर रहे थे आपस में, तो उस समय उनको सुनाई पड़ा, बहुत चिल्लाहट सुनाई पड़ा और ऐसे दूर से उनको देखने लगे, देखे कि बहुत सारे धूल उड़ रहे हैं, जैसे एक गौ के एक मतलब गौ के ग्रुप आ जाते हैं एक साथ, जो धूल उड़ता है, जैसे शाम मान लो सुबह जैसे कोहरा होता है, कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, इस प्रकार जब वो धूल उड़ते हुए देखे, चिल्लाहट सुनने लगे तो वो समझ गए कि राज्य में अराजकता फैल गई है। तो इसके कारण उनके मन में चिंता हो गई प्रजा के प्रति, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, जो ऋषि होता है, होते हैं, तो उनका प्रजा के प्रति कुछ करते हुए रहता है, तो हमेशा प्रजाओं का ही कल्याण के लिए सोचते रहते हैं, इसलिए वो राजाओं से परामर्श देते हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए आगे जब बैन महाराज को समझाए तो वो समझे नहीं, तो उनको अपना सांप से उनको उनका वध कर दिए। तो उसके बाद फिर क्या किए, अपने अपने जगह में चले गए। फिर जैसे इस प्रकार अराजकता फैल गया तो उनका मन में चिंतन होने लगा कि अरे ऐसा हम लोग
विद्वान है, भगवान का भक्त है, साधु है, अगर हम लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा तपस्या का कोई मूल्य नहीं है। अगर कोई तपस्या करता है, अपना तपस्या शक्ति को अगर प्रजाओं के कल्याण में या जनसाधारण के कल्याण में नहीं लगाते हैं, तो उनका तप जो है धीरे 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 नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो इसमें ये सोच के वो वापस आए, क्योंकि जब बैन को बध कर दिए थे तो वो बैन का शरीर को उनका मां जो सुनीता है वो उनको सजा के रखे थे, क्योंकि वो उनका मां जो है उनका पुत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। श्रद्धा होने के कारण स्वाभाविक जो भी एक पुत्र संतान के प्रति मां का श्रद्धा रहता ही है। तो इस प्रकार जब उनका पुत्र का मृत शरीर को अपना सामने देखे तो बड़ी दुखी से अपना पुत्र का शरीर लेके वो कुछ मंत्र के द्वारा या कुछ तेल के अंदर रख के उनका शरीर को तेज सतेज रखा था। अगर कोई मंत्र उस समय ऐसे शक्ति उनके अंदर थे, सिद्धियां थे कि वो मृत शरीर को भी तेजी रख सकते हैं। जैसे जनरली अभी जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उनको क्या करते, मेडिकल में क्या करते हैं, उसको आइस में डाल देते हैं, आइस रूम में, तो वो क्या होता है, वो बहुत कुछ दिन तक अच्छा रहता है। इस प्रकार सुनीता ने उनका पुत्र को रखे थे। तो उसके बाद कुछ समय बाद कुछ दिनों के बाद फिर मुनि ऋषि वहां आए, आके उस जो बैन महाराज बैन जो है उनका शरीर को मंथन करने लगे, अपना मंत्र के माध्यम से उनका जंघा को मंथन किए। जंघा को जब मंथन किए तो उसमें से एक काला सा व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जिसको हम कहते हैं निषिदा, निषाद बोलते हैं, निषिदा मतलब बैठ जाओ। जब वो प्रकट हो गया और बताने पूछने लगा कि मुझे, बड़ी नम्रता से पूछने लगा कि मैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो उनको मुनि ऋषि बोले तुम बैठ जाओ निषाद। फिर वो एकदम काला था, उनका हाथ छोटा था, उनका जबड़ा लंबा था, नाक चपटा था, ऐसा एक विकृत शरीर का वो उत्पन्न हुआ, एकदम काला था। तो इसलिए तो उनको जंगल में वो लोग रहते हैं, क्योंकि वो जो पाप है, जो बैन का जो पाप है वो उनके अंदर आए, उनका पाप का अंश का स्वरूप है वो, तो उसको वो बोले कि तू जंगल में चला जा। फिर वो जंगल में जाते हैं, वो निषाद लोग जंगल में ही रहते हैं। फिर उसके बाद क्या किया कि उनका भुजा, दाहिने भुजा को मंथने लगे। जब मंथे तो उसमें से संग भगवान ऋषभ देव का प्रकट हुए। ऋषभ देव के साथ उनका जैसे भगवान का एक अंश अवतार, जैसे इसमें बताया जाता है भागवत में कहा गया एस साक्षात भगवत हरीर अंश। तो जब वो भगवान ऋषभ देव ने सबके सामने, पृथ्वी महाराज ने जब प्रकट हुए तो वो ऋषियों ने वहां कहने लगे ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का अंश है। तो यहां 15 अध्याय में 6 नंबर श्लोक में बताया गया एस साक्षात भगवत, साक्षात भगवान हरीर अंश जातो लोक रुरक्षया, मतलब ये स्वयं भगवान का अंश है, स्वयं भगवान नारायण का अंश है, जो त्रिलोक, त्रिलोक का ईश्वर है, इनका अंश है। ये प्रकट हुए हैं कि जन ये जो नागरिकों का कल्याण करने के लिए उनका प्रकट हुआ है, स्वयं भगवान का अंश अवतार है। तो हम ऐसे ही कोई पूछ सकता है कि महाराज पृथ्वी जो है वो तो राजा है, उनको हम भगवान कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे? तो ये इसलिए शास्त्र में ऐसा बताया गया कि 6 नंबर श्लोक में स्वयं वो बताते हैं, और मुनि ऋषियों ने, वो शास्त्र का निपुण है, उनको सब कुछ पता है, तो जब प्रकट हुए तो वो कहे स्वयं भगवान का अंश है, ये धर्म का प्रवर्तन करेगा, जो अधर्म के मार्ग में लोग जा रहे हैं उसको वो रोकेगा, लोगों का कल्याण करेगा। तो इस प्रकार कहकर जब वहां जैसे सौम्य मागध जो बंदी जन थे उनके द्वारा उनको भगवान का स्तुति करने लगे। भगवान का स्तुति जब किए तब भगवान ने कहा कि आप मेरा स्तुति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो साधारण मनुष्य, अभी मेरे अंदर कोई गुण का प्रकट नहीं हुआ है, आप लोग मेरा गुणगान मत करो, क्योंकि जब वो मेरे अंदर जो दिव्य गुण का प्रकट होएगा तब आप जैसे जैसे कहते हैं ऐसे अगर मैं कार्य करूंगा, तब अगर तुम मेरा गुणगान करोगे या मेरा स्तुति करोगे तो उसमें फायदा लाभ है, पर ऐसे साधारण मनुष्य का हम गुणगान नहीं कर सकते, स्तुति नहीं कर सकते। भगवान इसमें सिखाते हैं कि जो पृथ्वी महाराज है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इस माध्यम से वो प्रसन्न हो गए। जब भगवान का प्रकट हुआ तो उस समय गंधर्व लोग जो है जो सुंदर गाते हैं वो संगीत गान करने लगे, सिद्धि लोग को फूल बरसाने लगे, तो अपने जो सिद्धियों जो देवता लोग अपना अपने जो कला है वो भगवान के सामने प्रदर्शित करने लगे। तो जो प्रदर्शित करके उनका स्तुति करने लगे तो भगवान बड़ी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर वो बड़ी प्रेम से कहने लगे कि आप लोग ऐसे मेरा स्तुति क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे अंदर इस ऐसा गुण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, तो इसीलिए मेरा गुणगान करना ये तुम्हारा व्यर्थ का समय है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें भगवान यद्यपि भगवान स्वयं श्री हरि के अंश है, ऋषभ देव ने भगवान श्री हरि के अंश है, नारायण का अंश है, फिर भी वो स्तुति करने का योग्य है, फिर भी वो कहते हैं कि मेरा स्तुति मत करो। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति का स्तुति नहीं किया जाता है, जनरली मनुष्य भगवान का ही स्तुति किया जाता है, मनुष्य का स्तुति नहीं किया जाता है। कितना बड़ा मनुष्य महापुरुष क्यों ना हो, उनका स्तुति नहीं किया जाता है, स्तुति सिर्फ भगवान का ही किया जाता है। तो सिखाते हैं इस कोण दृष्टि से भगवान कहते हैं अगर तुम लोग ऐसे मेरा स्तुति करोगे तो ऐसा बहुत सारा पाखंड फैल जाएगा, बहुत सारे पाखंडी लोग निकलेंगे ताकि अपने को भगवान समझेंगे। तो जनरली कोई व्यक्ति एक मूर्ख को हम सामने ले लेंगे, लोगों के सामने हम उसका स्तुति कराएंगे, अगर ये डॉक्टरी पढ़ा होता तो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता, तो अगर ये एक बार इंजीनियर होता तो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग पढ़ा होता तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता। पर ये जो उनका सामने उसका गुणगान करना या उसका प्रशंसा करना ये उनका अपमान ही है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा गुण है ही नहीं। हम व्यर्थ में उसका गुणगान करते हैं, किसका, उसका हम अपमान ही करते हैं। तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि महाराज पृथ्वी ने शिक्षा दे रहे हैं कि ये ऐसा कोई साधारण व्यक्ति का स्तुति नहीं किया जाता है। जो भगवान स्वयं भगवान है उसके अंदर हम जब गुण प्रकट देखते हैं तो हम उसका स्तुति जब करेंगे तो हमें तुम्हारे जो स्तुति का अर्थपूर्ण रहेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस प्रकार जब भगवान ने कहने लगे तो वहां का जो बंदीजन थे या ऋषिगण थे वो बड़ी प्रसन्न हो गए। फिर भी ऋषियों का अनुमति से फिर वो वहां का जो बंदीजन है वो उनका स्तुति करने लगे बड़ी सुंदर भाव से। तो इसीलिए भगवान को एक बार इसमें कहा गया है आदिराजम। आदिराजम का अर्थ यह है कि जो आदि राजा है, बहुत पुराना है। आदि मतलब मूल। तो इस पहला एक दो नंबर पहले श्लोक में आया है आदि राजम भगवान। तो आदि जो है वास्तविक स्वयं नारायण है, तो उनका अंश है। ऐसो साक्षात हरिर अंशो, और भी एक जगह स्तुति किया गया है, अयं स्वयं भगवत त्रय अधीश। मतलब ये जो प्रकट हुए हैं हमारा सामने महाराज पृथ्वी के रूप, पृथ्वी के रूप में, वो स्वयं नारायण है जो कि त्रिलोक का अधीश्वर है, त्रिलोक्य ईश्वर। तो ये यहां पे जो आदि राजा है, तो स्वयं स्वयं भगवान श्री नारायण ही आदि राजा है, उनका अंश है ये जो पृथ्वी महाराज। साक्षात भगवत हरिर अंशो, तो ये भगवान का अंश होने के कारण ये स्वयं भगवान है, और भगवान ये सब महाराज पृथ्वी के अंदर भगवान का सारे गुण विद्यमान है। जैसे भगवान, हम जनरली पराशर मुनि ने हमें भगवान का एक संज्ञा दिया है, डेफिनेशन दिया है, जैसे छह ऐश्वर्य जिसके अंदर है वही, उसी को हम भगवान समझ सकते हैं। पर यहां स्वयं महाराज पृथ्वी के अंदर सारी दैवी गुण परिपूर्ण है। भगवान के अंदर जो भी गुण है, जैसे यश है, बल है, ऐश्वर्य है, वैराग्य है, रूप है, सुंदर रूप है, ये सब पृथ्वी महाराज के अंदर विद्यमान है। तो ये स्वयं भगवान नारायण का अंश है। नारायण का अंश होने के कारण ये भी आदि राजा है, और इनको कहा जाता है नृपाल। नृपाल अर्थ है राजाओं का जो पालन करता है। नृ अर्थ राजा, मनुष्य। नृपाल जो राजाओं का पालन करता है। ये भगवान पृथ्वी महाराज जो आए इस संसार में, तो ये सारे राजाओं को भी पालन किए, सारे नागरिकों को धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करते हुए सर राजाओं को भी अपने कंट्रोल में ले रखे थे। तो इसीलिए इनके अंदर अद्वितीय गुण होने के कारण इनको अधि राजा भी कहा जाता है। अधि राजा मतलब एक विशेष राजा है। ऐसे राजा पहले कभी संसार में प्रकट नहीं हुए हैं, ये जन्म नहीं लिए हैं, इनके अंदर इतना दिव्य गुण है। तो इस गुण यहां प्रकट होता है, और भी स्वयं ब्रह्मा ने आके महाराज पृथ्वी को प्रमाणित करवा दिया कि ये स्वयं भगवान है। कैसे? ऋषियों ने तो कहा कि हाँ ये भगवान है, इनका स्तुति करना योग्य है, उनका स्तुति किया जाए, प्रत्यक्ष रूप में कहा है। जनरली हम जो समझते हैं तीन रूप से, तीन आधार पर हम सत्य को समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। जो प्रत्यक्ष जो है, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं उसके अंदर क्या गुण है, कैसा है, उनको नहीं समझ, बस प्रत्यक्ष हम देखते हैं। एक साधु आए हैं, एक महात्मा आए हैं, क्योंकि तिलक किए हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, और कमंडल पकड़े हैं, जो भी साधुओं का ये भूषण है, और वो सब व्यवहार किए हैं, तो इसलिए हम देखते हैं हाँ ये साधु है। पर उसके अंदर वो चोर है या क्या है, हम कैसे समझेंगे? तो ऐसे भी बहुत मंदिर में आते हैं, चोरी के चक्कर में आते हैं, किसी का पर्स लेके भाग जाते हैं, किसी क्या करते हैं, तो उनका अपना अलग अलग दिशा रहता है, अलग अलग उद्देश्य रहता है, पर वो उनका बेस जो है साधुओं का बेस है, क्योंकि जहां जैसे चाहोगे वहां ऐसे ही बेस अगर करोगे तो वहां आप लोग हम टिक सकते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, वास्तविक ये सत्य नहीं है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष इतना मात्रा से सही सत्य नहीं है, अनुमान में उससे भी परसेंटेज से कम है, अनुमान करके कोई चीज को हम नहीं समझ सकते। तो आखिरी जो है प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण से हम समझ सकते हैं कि वास्तविक जो वस्तु है वो सत्य है या नहीं है, सही है या गलत है। तो यहां जब महाराज पृथ्वी का प्रकट हुए तो ऋषियों ने प्रत्यक्ष रूप में भी कह दिया कि स्वयं भगवान है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, विद्वान है, उनके अंदर तप शक्ति है, शक्ति समझ सकते हैं। फिर भी ब्रह्मा जी ने वहां आए, ब्रह्मा जी ने आकर वहां देखे भगवान का जो चिन्ह है, भगवान का दक्षिण हस्त में बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह है और उनका चरण में कमल का चिन्ह है, जिसके कारण ये ब्रह्मा जी ने प्रमाण कर दिया, स्टाम्प लगा दिया कि हाँ ये स्वयं भगवान है, ये भगवान का अंश है। तो वो कुछ रहता है, प्रभुपाद कहते हैं कि हर चीजों को समझने के लिए कुछ उसका नियम रहता है, कुछ साइन रहता है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार स्वयं भगवान पृथ्वी महाराज ने स्वयं भगवान का अवतार है, और वो उनको जनरली साक्ष्य अवतार कहा जाता है, साक्ष्य वैसा अवतार जो भगवान का जनरली दो प्रकार का ही वो अवतार लेते हैं, जैसे एक अंश अवतार है जिसे पार्टियल इनकर्नेशन कहते हैं, और दूसरा जो है सत्यावेश अवतार, एम्पावर्ड इनकर्नेशन। तो ये जो अंश अवतार है, एक सत्यावेश अवतार, पर चैतन्य चरितामृत में बताया गया है तो उनका गुण के हिसाब से तो उनके छह प्रकार से ही वो लेते हैं, अपना अवतार लेते हैं, जैसे एक प्रभाव, एक वैभव, एक तो हो गया प्रभाव, दूसरा वैभव, तीसरा जो है अंश, चौथा सत्यावेश, पांच बाल्य जैसे बॉयहुड, और छह चाइल्डहुड और बॉयहुड। पर इसी स्रोत से ही भगवान का प्रकट होते हैं, जो पर ये अलग अलग है, कभी सत्यावेश अवतार, अंश अवतार, पर जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो एक ही है, उनके और उनका अवतार जो अवतार में कोई अंतर नहीं रहता है, स्वयं कृष्ण ही है। तो इस जो निष्कर्ष ये है, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा जो नर नारायण है डायरेक्ट भगवान का अवतार है, या पृथ्वी महाराज भी डायरेक्ट भगवान का अवतार है, या बरहाव भगवान कहो, या नरसिंह भगवान कहो, या श्री राम भगवान कहो, पर सबका जो दृष्टिकोण, चाहे अलग अलग दृष्टिकोण से हो, पर कृष्ण से ही सब उत्पन्न है। एतचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है, उनका अवतार है, अलग अलग ये जो है इनका अवतार है, कभी अंश अवतार में आते हैं, कभी कलावतार में लेते हैं, कभी सत्यावेश अवतार में आते हैं। तो अपना भगवान का उद्देश्य के अनुसार जब धरातल में आवश्यकता पड़ता है, इस हिसाब से वो अपने को प्रकट करते हैं, अपना अवतार लेते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं जो द्वापर युग में 28वां मन्वंतर में द्वापर युग अंत में भगवान का प्रकट हुआ, कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हुआ, तो वो स्वयं भगवान का स्वंश है, जो भगवान का स्वरूप है वो कृष्ण है। जैसे हमारा स्वरूप एक रहता है, हमारा नाम रहता है, हमारा स्वरूप रहता है, हाथ पे रहता, पैर रहता है, मुख रहता है, शरीर रहता है, एक मनुष्य हम कैसे समझेंगे? तो हाथ उसका एक स्वरूप को समझ आते हैं, रूप देख समझते हैं। इस प्रकार भगवान का एक स्वरूप है, वो जो है वो शाश्वत है, दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वादय पुनर्जन्म नैति माम इति अर्जुन। इस चीज को जो समझ जाता है तो वो भगवान का कृपा प्राप्त कर लेता है, इस जन्म चक्र से छूट जाता है। तो निष्कर्ष ये है, चाहे बराह कोई बराह भगवान से पूजा करे, या कोई राम जी से पूजा करे, या कोई पृथ्वी महाराज को आप भक्ति करे, पर मूल जो है कृष्ण है, ये निष्कर्ष है। इसको जो जाना है, समझा है, किसी किसी का बढ़ जाता है, एक श्रद्धा रहता है। कोई नृसिंह भगवान से प्रेम करता है, नृसिंह भगवान का पूजा करते हैं, कोई राम जी का पूजा करते हैं, अलग अलग एक उनका भाव के अनुसार उनका पूजन यजन होता रहता है। पर वो जानते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण है, उनसे ये सब अवतार है। तो इस प्रकार भगवान का अवतार होता है, जो पृथ्वी महाराज है भगवान का, स्वयं भगवान का अवतार है। और यहां श्लोक में बताया गया है, जब सिंह अपने पूंछ पर ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथ्वी अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के संगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी, धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। पृथ्वी महाराज का अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब महाराज बैन का अंत हो गया, दुष्ट था, अधर्म को फैलाता रहता था, लोगों को अधर्म में प्रवृत्त करता था, उसी को रोकने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए, धर्म को धर्म, लोगों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिए उनका अवतार हुआ। तो यहां उनका जो ऐसा उनका स्तुति करते हैं कि जो भगवान है धर्म में प्रवृत्त करने के लिए उनका अवतार हुआ है। जब सिंह अपने पूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। तो इनका अंदर ऐसे बल था, शक्ति था, प्रभाव था पृथ्वी महाराज के अंदर। जैसे जंगल में शेर रहता है, सिंह रहता है, वो पूरा निर्भय में घूमता रहता है, कोई चिंता नहीं रहता है, आराम से आपका जब वो शिकार में भागता शिकार में जब निकलता है तो वो किसी से डर नहीं रहता है, अपना पूंछ को ऊपर करके पूरा एकदम हीरो की तरह वो घूमता रहता है, किसी से डर नहीं रहता है। जंगल में सबसे बड़े कौन है? हाथी है। वो हाथी के साथ भी वो चैलेंज करता है। तभी को ये दो ऐसे ही देखा गया, दो चार दस सिंह मिलकर वो हाथी को भी गिरा देते हैं, इतना बड़ा वो पशु है। तो ये सिंह जो है वो निर्भय है, ये क्षत्रिय का गुण है। क्षेत्र जो होता है, प्रपाद यहां भी परपोर्ट में ऐड किए हैं, जो क्षेत्रीय जो हमारा भारत में हमारा या देश में क्षेत्रियों को सिंह कहा जाता है। सिंह और सिंह ये एक जैसा है, क्योंकि सिंह जो है वो निर्भय रहता है, वो किसी को भय नहीं करता है। और सिंह जो है जितना हमारा राजा पूर्व से जो राजा हुए हैं सब सिंह में आते हैं। अब देखो इतिहास पढ़ो, उसमें हम पढ़े हैं तो उसमें जब हम देखे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राजा जो क्षत्रिय राजा रहते हैं वो सिंह उनका टाइटल रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो ये देश में जो सिंह होते हैं ये क्षत्रिय ज्यादा सिंह रहते हैं। तो क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? वो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटेंगे। सर्जो वीरजन धृति क्षमा युद्धे च अपलायनम। तो उनके वो क्षेत्रीय का जो स्वभाव है युद्ध से कभी पीछे नहीं हटना है। तो सिंह जैसे निर्भय में घूमता रहते, क्षेत्रीय भी कभी वो जंगल में निकलता है तो निर्भय में वो शिकार करता रहता है। तो ये जो महाराज पृथ्वी है वो उनके अंदर क्षेत्रीय का गुण भी परिपूर्ण रूप में विद्यमान था। सारे राजाओं को वो अपना हाथ में रखे थे। जब सिंह बाहर सामने निकलता है जंगल से, जंगल के अंदर निकलता सारे छोटा छोटा जो जैसे सियार है, जैसे चूहा है, छोटा छोटा जो पशु पक्षी जो भी सिंह का आहार बन सकते हैं। जीव जीवस्य जीवनम, हर जीव एक दूसरे का आहार के रूप में ऐसे भागवत में बताया गया है। तो सिंह जो होता है उसका सामने जो देखता है कि सिंह आ रहा है तो वो सब भाग जाते हैं, इधर उधर चित्तर बितर हो जाते हैं, क्योंकि वो डर रहता है, भय रहता है। क्योंकि आजकल सबके अंदर भय है, हमारा हम लोग जब जीते हैं भय में रहते, कोई भी चाहे धनी हो या गरीब हो हमेशा भय रहता है। भय क्यों रहता है? क्योंकि वो वस्तु के प्रति विषय के प्रति आसक्त है। भय का मूल जो है, रूट जो है आसक्त। आसक्त कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञान से, मोह से। अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, जब हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार में जब आवृत हो जाता है तब हम मोह में आ जाते हैं और कोई वस्तु भौतिक वस्तु के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये जो आसक्त हमारा मूल भय का मूल कारण, निर्भय, हम निर्भय नहीं रह सकते क्योंकि हम हमेशा भय में रहते हैं। ऐसा कोई धन का कुछ आता है, कोई सोचता है मेरा में इतना सारा धन रखा है, इतना सारे स्विस बैंक में इतना सारे करोड़ों रुपया रखा है, कहीं स्विस बैंक उठ ना जाए, कहीं डूब ना जाए, मेरा पैसा डूब जाए कोई, और कोई सोचता है अरे मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, मेरा परिवार है, कहीं मेरा जीवन चला ना जाए, जान चला ना जाए, मैं कहां मृत्यु को प्राप्त ना करूं, सब मृत्यु को डरते हैं। तो ये हमारा अज्ञान के कारण, क्योंकि हम लोग जब भौतिक स्तर पर रहते हैं या शरीर के साथ हम संबंध बांधते हैं, जो जीवात्मा है इस शरीर में जो है, उस शरीर के स्तर पर जो शरीर से जो संबंध बांधता है, इसके कारण वो मोहित हो जाता है, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। भोग ऐसे से प्रसक्तानंग तया अपहृतो चेतसा, तो भोग में प्रवृत्त हो जाता है तो वो नहीं समझ पाता है, इसलिए वो हमेशा भय में रहता है। तो निर्भय कौन रहता है? जनरली हम देख सकते हैं कि एक भक्त है, भगवान का भक्त है, वो निर्भय रहता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आनंद में रहता है। ब्रह्मा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचन्ति न कांक्षति, सर्व सम सर्वेश भूतेषु मद भक्त्या लभते परा। समान दृष्टि से देखता है सुख दुख, वो समान दृष्टि से देखता है, ठंडी गर्मी को सहन करता है, तो ये सम दृष्टि रहता है, क्योंकि वो जानता है ये सब भौतिक है, पंचभूत से सब उत्पन्न हुआ है, हमारा शरीर पंचभूत में उत्पन्न हुआ है, जो मैं माइक में बात करता हूं वही पंचभूत में उत्पन्न हुआ है, पंच तत्व भूमि राप नलवायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, यह अष्ट धातु है, इसमें सब बना हुआ है। हम इसमें ऊपर उठने के लिए कैसे करना पड़ेगा? ना भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, भगवान का कथा श्रवण करना पड़ेगा, तब हम इस अज्ञान से हम बाहर आ सकते हैं। भागवत में बताया गया हृदयंतस्तय अभद्राणि विदुनति श्रुत्सता, जब भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब हमारे हृदय में जो गंदगी है, जो मल है, वो भगवान उसको हटा देते हैं। जो भौतिक इच्छाएं है वो हमारा गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब हमारा अंदर एक बड़े बड़े भक्ति मार्ग में जाने के विरुद्ध है, शत्रु है हमारा, ये हमें आगे आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस चीजों को हम सिर्फ भक्ति से ही हम उसको मिटा सकते हैं, ज्ञान के तलवार में, ज्ञान के तलवार से हम ये अज्ञान रूपी अंधकार को हम काट सकते हैं, अज्ञान का जो पर्दा है उसको हम काट सकते हैं। तो यहां प्रपाद क्षत्रिय राजा के ऊपर कहे हैं, जैसे और भी एक पॉइंट बताए हैं, तो स्त्री है अगर वो क्षत्रिय के जगह पर आ जाता है तो फिर देश के लिए संकट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली जो स्त्री होते हैं उनका ये जो राजनीति करना, ये बाहर ये सब उनके बस की बात नहीं है, युद्ध करना ये करना वो सब उनके बस की बात नहीं है, उनको सिर्फ उनका कुछ स्तर है, प्रपात कहते हैं कि ये क्षत्रिय का ही कार्य होता है। जैसे अभी हमारा देश में भी पहले हम बहुत देखे हैं, जैसे हमारा जो मुख्य मुख्य पदवी में स्त्री आ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि स्त्री को आगे लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत पीछे है, हमें उसको आगे लेना चाहिए। तो ये शास्त्र का विरोध है, शास्त्र में ऐसा बताया नहीं गया है। शास्त्र में बताया गया है स्त्री जो है वो घर में ही रहता है, तो वो किसी का संरक्षण में रहता है। जो प्रभुपाद हमेशा बताते हैं उनका लेक्चर में, जो स्त्री होता है बचपन में उनका पिता के शरण में रहना चाहिए, जब बड़े हो जाता है तो उनका शादी हो जाता है उनका पति के शरण में रहना चाहिए, तो और जब उनका संतान हो जाते हैं तो उनका पुत्र या संतान के अध्यक्ष संरक्षण में रहना चाहिए। ये एक सिस्टमेटिक है, आग पहले से जो शास्त्र में बताया गया। ये जो स्त्रियां कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, शास्त्र बराबर फॉलो करते थे, पर अभी ये सब उल्टा हो रहा है। जो भी है तो प्रपात इस प्रकार परपोट में लिखते हैं, यहां भी एक लाइन में बताए हैं, इस तरह यदि सिंह सदृश राजा के स्थान पर कोई स्त्री प्रशासक अध्यक्ष बन जाए तो यह अत्यंत खेदपूर्ण होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अभागा माना जाता है। तो इस प्रकार श्लोक में यही स्तुति किया गया कि ये जो गुण है पृथ्वी महाराज का, वही वहां यहां स्तुति किया गया कि ऐसा ऐसा वो करेंगे। तो हम आगे कल का श्लोक में पढ़ेंगे, तो आज समय तो हो गया, अभी हम यही विराम देते हैं। जय श्रीमद् भागवतम की। कोई अगर कमेंट्स है, प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, गलती है तो माफ कीजिएगा, पहली बार क्लास दे रहा हूं इसलिए। हरे कृष्ण। समस्त भक्त वृंद की जय। हाँ राधे।